अरे अमीना बहन, कहाँ से आ रही हैं आप? बड़ी उदास लग रही हैं।
मास्टर जी नमस्ते, वो सदर अस्पताल गई थी।
क्यों, सब ठीक तो है ना?
कहाँ मास्टर जी, पड़ोस में रानी है ना, उसकी बेटी को कुत्ते ने काट लिया था। आज ही सुबह तो हुआ सब कुछ। अब रानी का बेटा तो बहुत छोटा है, उसे छोड़ के रानी कैसे ही जा पाती, तो हम ही गए थे उसकी बेटी को अस्पताल लेकर।
अच्छा, तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्यों नहीं गए? सदर अस्पताल तो बहुत दूर है।
यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं है, वही एक डॉक्टर है, कब रहते हैं कब नहीं कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर डॉक्टर मिल भी जाए तो इलाज के लिए कुछ साधन ही नहीं है।
क्या वहाँ जाकर पता किए थे ये सारी बातें?
नहीं, पर सभी यही कहते हैं।
क्यों श्रोता बंधु, क्या आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी कुछ ऐसी है? क्या आपने सही मायने में कभी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर पता किया है कि वहाँ किस किस तरह की जांच और इलाज की सुविधा है? क्या आपको पता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? बदलाव की तरफ पहला कदम होता है ज्ञान का। अगर हमें यही नहीं पता हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, तो हम सही से उन सेवाओं की मांग भी नहीं कर सकते। इसीलिए आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर 30,000 की आबादी पर होती है, जहां दिन में कम से कम 6 घंटे जांच और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इन 6 घंटों में एक चिकित्सा अधिकारी यानी कि डॉक्टर भी वहां रहना जरूरी है। लेकिन आपातकालीन सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे नर्स रहनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा अधिकारी को भी वहां बुलाना संभव होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हफ्ते में 6 दिन खुला रहना चाहिए और वहां मरीजों को दाखिल करने के लिए कम से कम 6 बेड होने चाहिए। यहां खून, पेशाब और मल की जांच की सुविधा के अलावा सांप और कुत्ते के काटने पर होने वाले बीमारियों के इलाज की भी सुविधा होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान होने वाली सारी जांच और सलाह की सेवा भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलनी चाहिए। इनमें जरूरी है गर्भावस्था के 12 हफ्तों से पहले होने वाली रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, डिलीवरी से पहले होने वाली कम से कम 4 बार जांच, फॉलिक एसिड की गोलियां और टेटनस के खिलाफ टीके, पेशाब, ब्लड शुगर और एनीमिया की जांच इत्यादि। इसके साथ होने वाली माँ की सही देखभाल और खान पान पर सलाह भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली सेवा। इसके साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव की सुविधा, बच्चे के जन्म के बाद 48 घंटे तक दाखिल रहने की सुविधा और जरूरत पड़ने पर गर्भवती को बड़े अस्पताल में रेफर करने की भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बच्चे के जन्म से लेकर 3 दिन तक उसकी देखभाल, ANM को जन्म के बारे में जानकारी देना, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधित सभी जरूरी सलाह, बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़े दूध से लेकर नियमित स्तनपान कराने पर सही सलाह देना और बच्चे का नियमित टीकाकरण भी यहाँ होना चाहिए। माँ और बच्चे से जुड़ी योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी और इन योजनाओं के प्रावधान का भी लाभ यहाँ से मिलना चाहिए। और इन सब सेवाओं के साथ साथ परिवार नियोजन संबंधित सलाह, जानकारी और परिवार नियोजन से जुड़े ऑपरेशन जैसे पुरुषों के लिए नसबंदी या महिलाओं में कॉपर टी लगवाने की सुविधा भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए। साथ ही हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति भी होनी चाहिए। ये समिति समझ लीजिए कि मरीजों की सहायता के लिए ही बननी चाहिए और इन सब के साथ साथ छोटे मोटे ऑपरेशन और इलाज के लिए दवाई और बाकी चीजें भी यहाँ मिलनी चाहिए। तो साथियों, उम्मीद है कि आज आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी कई जरूरी जानकारी मिली होगी। और साथ ही अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप जांच या इलाज के लिए अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं? क्या वहां पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं? अपना अनुभव या विचार बताने के लिए अपने फोन में नंबर 3 दबाएं और रिकॉर्ड करिए अपनी बात। तो साथियों, जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।